SBS हिंदी। आशा जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया
नमस्कार।
आपने हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आप मान गई और इतना वक्त दे रही हैं हमें। आप गायकी की दुनिया में जानी मानी हैं, छाई हुई हैं पिछले 6 दशकों से और आपकी कामयाबी सबके सामने है। बहुत साल हो गए आपको गाते और आज की संगीत की दुनिया में और पहले के ज़माने में आपको बहुत फ़र्क नज़र आता होगा, तो बताइए उस ज़माने में रिकॉर्डिंग्स कैसे होती थी आशा जी?
उस जमाने में रिकॉर्डिंग को समझ लीजिए कि कभी कभी 15 से लेके 100 आदमी होते थे रिकॉर्डिंग में, म्यूजिशियन।
अच्छा
जी। हाँ, गाने के साथ साथ होता था ऐसा कि सारे साथ में रहते थे और सब हम एक साथ मिलके काम करते थे। पहले रिहर्सल होती थी, फिर म्यूजिशियन के साथ रिहर्सल होती थी, म्यूजिशियन के साथ रिहर्सल होती थी और फिर रिकॉर्डिंग जब शुरू होता था तो उसका कोई वो नहीं था कि कितनी देर लगेगी, क्या होगा, कुछ पता नहीं था।
अच्छा।
कभी सुबह 10 बजे शुरू हुआ शाम को 6 बजे, तो कभी दोपहर को शुरू हुआ तो रात के 2 बजे 3 बजे, मतलब उसका कोई अंत नहीं था।
अच्छा।
लेकिन रिकॉर्डिंग जब हो जाता था तो हम सबसे जाते थे, लेकिन बहुत ही खूबसूरत गाने उस जमाने में बने।
बिल्कुल वही मैं कहने जा रही थी कि उन गानों में आपके गीतों के बोल में और सुरों में जो सोज था उसकी कमी हमें खटकती है। आपकी क्या राय है आज के गीतों के बारे में?
जी मैं आपके जैसी हूँ, मुझे बोल अच्छे चाहिए गानों के। अगर गानों में बोल ना हो तो फिर क्लासिकल गाना अच्छा खाली आलाप करें, बोल ही अच्छे ना हो तो गाना क्या। आप जब कोई चीज गा रहे हैं तो दूसरे के मन को बोल लगते हैं पहले
जी,
उसके बाद उसकी तर्ज लगती है जो जूम, उसके बाद गाने वाले की आवाज जो सजाता है गाने को।
सही,
तो मुझे लगता है बोल अच्छे ना होने की वजह से गाने इतने अच्छे नहीं होते। और अभी देखिए कि झंडू बाम तो कोई वर्ड नहीं हुआ, एक प्रोडक्ट का नाम है। कभी झंडू बाम जब गाने में आने लगा तो आप बताइए कि मतलब गाना कुछ रहा ही नहीं ना।
बिल्कुल यही मैं कहने वाली थी, मुन्नी अगर ऐसे नाचेगी तो बदनाम तो होगी ही ना बेचारी। और आपको रियलिटी शोज में टीवी पर देखकर बहुत खुशी होती है, इन रियलिटी शोज में आशा जी कितनी रियलिटी छुपी है बताइए ना।
मेरे ख्याल में ये मीडिया है, चैनल्स हैं, इनका फायदा जरूर होता है, उनको बड़े ऐसे नचाते हैं तो नेचुरली ये मोबाइल का फायदा होता होगा, टीवी का फायदा होता होगा। बच्चों का फायदा ये है कि 2-4 महीने तक वो पब्लिक के सामने आते हैं, अगर अच्छे रहने वाले हैं तो उनको बाद में जब वहाँ से निकल जाते हैं 1-2 नंबर लेके, तो उनको स्टेज पे गाने का मौका मिलता है, स्टेज पे गाते रहते हैं। नए गाने तो उनको मिलते नहीं है, ना उनके रिकॉर्ड बनते हैं, तो आप बताइए उनका फ्यूचर कुछ भी नहीं है। और ऐसे भी मैं आपको बताती हूँ कि आने वाले जमाने में म्यूजिक प्लेबैक सिंगिंग, ये जो एक अलग से अपना एक ये था, क्या बोलते हैं, बिजनेस था
जी,
प्लेबैक सिंगर का एक दर्जा था।
बिल्कुल।
वो अब नहीं रहा
जी
और वो अभी रहेगा भी नहीं, क्योंकि ना रिकॉर्ड बनते हैं तो अच्छे अच्छे गाने आते हैं, ना लोग खरीदते हैं, ना बिकते हैं और ना कोई बनाना चाहता है। अब जो गाने फिल्मों में आएंगे वही थोड़े दिन 1-2 महीने तक चलेंगे, वही म्यूजिक हो गया, डांस करने को लोगों को मिले वही हो गया बस।
सही कहा आपने, वो पुराने जो गाने थे उनकी खुशबू अगरबत्ती की तरह फैलती रही, आज भी फैल रही है। जो नए गाने हैं वो तो आतिशबाजी की तरह उठते हैं और फूट कर चले जाते हैं। बिल्कुल
चले जाते हैं,
बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, गजल आजकल गाई जा रही है कि नहीं, हम तो नहीं सुन पाते यहाँ पर?
हाँ, गजलें भी आजकल कम हो गई हैं, जमाना इतना बदल रहा है कि गजलों के अच्छे अच्छे लफ्ज जो हैं उर्दू के या हिंदी के जो भी, वो समझना भी लोगों के मतलब बाहर की बात हो गई है, क्योंकि अंग्रेज इंग्लिश इतना हावी हो गया है बच्चों पे कि उनको हिंदी मराठी गुजराती इतनी अच्छी आती नहीं, जब बोलनी नहीं आती है तो उसके मतलब क्या समझेंगे।
सही है।
तो उनको उन लोगों को अभी से अगर कोई समझाएं कि ये इसका मतलब ये है, तब जाके उनको गाने समझ आएंगे। तो उर्दू गाने तो ज्यादातर उर्दू से ही होते हैं जो गजलें हैं, तो लोगों को समझना बड़ा मुश्किल होता है
जी।
इसलिए शायद लोग ये नहीं कर पा रहे हैं। और लोग इतने फास्ट हो गए हैं कि 2 घंटे बैठ के कोई चीज सुनना ये भी उनके लिए मुश्किल हो गई
जी। शायद जमाना ही इतना बदल गया है।
मैं आपको बताती हूँ, जमाना बदल गया। परसों मैंने एक शो किया था 1 महीना पहले IIT का, जो IIT को आप जानती हैं,
बिल्कुल बिल्कुल,
बॉम्बे की, दिल्ली, सब जगह के बच्चे आए थे, 20,000 करीब बच्चे थे और खड़े थे सारे के सारे। जैसे मैं स्टेज पे गई तो मैंने सोचा कि भाई मैं तो गई आज, क्योंकि ये तो यंगस्टर है, ये तो मुझे पहचानते भी नहीं, मेरी उम्र के क्या, मेरे आगे मतलब उम्र के बाद भी पैदा नहीं होंगे। तो मैंने उनसे यही कहा कि भाई मैं जो गा रही हूँ, शायद आप पैदा भी नहीं हुए थे तो आपको याद होंगे कि नहीं मालूम नहीं। तो मैंने तू है वही दिल में जिसे अपना कहा, तू है जहाँ, मैंने इतना गाया और बच्चे ने गाना शुरू कर दिया।
अच्छा, क्या
अब आप सोचिए कि 20,000 में से 15,000 बच्चे गा रहे हैं और जोर से गा रहे हैं, तू है वही। तो मेरी इतनी खुशी हुई, मैंने कहा इन बच्चों को ये गाने मालूम है, इसका मतलब अभी तक आरडी बर्मन सबके दिमाग में बैठा हुआ है।
बिल्कुल, यही मैं पूछना चाह रही थी कि पंचम दा के बारे में बताइए ना। आपने बहुत से म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया, लेकिन आप दोनों का जो तालमेल था वो तो कोई भुला नहीं सकता। जैसे आपने बताया कि बच्चे 15,000 बच्चे भी गाने लग गए, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए ना हमें।
बर्मन साहब के लिए मैं क्या बताऊँ, उन्होंने जो म्यूजिक दिया वो आने वाले अगले 50 साल के बाद के जो क्या गाएंगे वो पहले देखे गया वो। और वो तीसरी मंजिल से उसने स्टार्ट किया, आज भी तीसरी मंजिल का म्यूजिक उतना ही पॉपुलर है जितना के नया म्यूजिक, और लोगों को सब गाने याद है और उनका सब वो मैं आपको एक आदमी के स्वभाव बताती हूँ, उसके सामने आप 1-2 लाख का हीरा रख दीजिए बड़ा, और उसके सामने एक रिकॉर्ड रख दीजिए, वो रिकॉर्ड उठा लेता था। इस किस्म का आदमी था, म्यूजिक में डूबा हुआ आदमी था, उसको कोई रिश्ता नहीं था, उसको ना कोई कल्पना थी दुनिया की, वो अपने म्यूजिक में ही रहता था, पैसा बचाना, वो तो उसी के खून में ही नहीं था, वो राजा था त्रिपुरा का, तो उसको वो भी नहीं था, वो राजे लोग का जैसा स्वभाव होता है वैसे उसने जीवन दिया है।
बात की आपने हीरो की, तो आपकी ये जो जेवर और हीरे टीवी पर और साड़ियां चमकती है, वाह क्या कहने, उस प्रकार की साड़ियां आशा जी आजकल दिखाई भी नहीं देती। हमारी राष्ट्रपति जी पहनती हैं सुंदर साड़ियां, प्रतिभा पाटिल जी, आपकी साड़ियों में क्या चॉइस है बताइए, आपको क्या अच्छी लगती है खास?
मुझे पहनने के लिए साड़ी रोज पहनने के लिए या स्टेज के लिए,
कि रोजमर्रा के जीवन में कैसी साड़ियाँ पसंद करती हैं आप?
पहले जब 60s 70s में मैं कॉटन पहनती थी, कलकत्ता कॉटन, बहुत कॉटन ही पहनती थी, तभी मैंने सिल्क नहीं पहना था, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता था। और आप मुझे वो क्रेप जिशीन और जो क्रेप है वो पसंद है, पर मैं जब स्टेज पे जाती हूँ तो बहुत काम की हुई साड़ी पहनती हूँ, ताकि चमके साड़ी, मैं नहीं चमकू बलेल की साड़ी तो चमके
नहीं, आप तो चमकती है।
वैसे मुझे सिल्क साड़ी हो और उसपे बड़ा सा किनारा हो, एक कलर कलर के, अगर अलग अलग कलर के ना, मतलब बॉर्डर हो, तो मुझे बहुत पसंद
जी। और आप गाती तो हैं ही अच्छा, वो तो दुनिया को पता है, दुनिया मानती है, आपकी वो अदा हमें बड़ी पसंद है जब शोखी से आप हंस पड़ती हैं और गालों में गड्ढे पड़ते हैं
वो तो पिताजी की देन है, पिताजी अच्छा। के और वो मुझे आए सिर्फ गलती मेरे ऊपर तो आए
जी उन गड्ढों में लोग खोकर रह जाते हैं आशा जी। ये शरारत, ये जो चुलबुलापन है वो आज तक बरकरार है, इसके पीछे भाई क्या राज है?
स्वभाव ही है, मेरा ख्याल जन्म से इनकम जैसा होता है वैसे रहता है, ये मेरा स्वभाव ही है कि बैठना नहीं, 1 मिनट भी काम करते रहना, कुछ भी काम हो करते रहना।
अच्छा।
बैठना नहीं, ये मेरा काम नहीं है ऐसा नहीं है, सब काम मेरे हैं, और बाहर जाना, साड़ी की दुकान में घूमते रहना, जेवर की दुकान में घूमते रहो, काम में तो मैं ये करती रहती हूँ, काम होता है पूरा दिन भी काम में लगे रहते हैं।
तो आप दुकानों में जाती हैं खुद या बहुत सवेरे जाना पड़ता होगा, भीड़ हो जाती होगी? नहीं नहीं तो आपको देख,
मैं मॉल में नहीं जाती, हॉल में आदमी फंस जाता है, लोग बहुत होते हैं तो अपनी गिनी चुनी दुकानें हैं, इंडिया एम्पोरियम है, जैसे कला निकेतन है, या पेठे ज्वेलर्स हैं,
जी जी जी,
गहना ज्वेलर, तो ऐसे ऐसे ज्वेलर्स की दुकान मेरी है जो छिटके से घुस गया बैठ गया अंदर, साड़ी की दुकान में घुस गया बैठ गया अंदर।
अच्छा है, चलो हमें भी पता चल गया। और आपने बात की काम की है, आप काम हरदम करती रहती है, चलती
बात बताती। शादी किसी की भी हो, जैसे मेरे घर में मेरी काम करने वाली भाई की लड़की की शादी है, मैंने कहा साड़ियां मैं ले आती हूँ, मैंने कहा हाँ मैं साड़ियों को चुन चुन के लेके आऊंगी, तुम्हें सस्ती चाहिए ना कोई बात नहीं मैं लेके आऊंगी, और मैं साड़ियां जाके उनके लिए भी चुन चुन के लाती
हूँ। वाह भाई वाह, खुश नसीब है उन लोग, बहुत खुश नसीब है। वो तो जाहिर है। अच्छा, आपने बात की काम की, हमने सुना है आप पकाती भी बहुत अच्छा है और बहुत शौक से पकाती हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
खाना पकाने का मुझे बहुत खाना पकाने का शौक है, बच्चों के लिए शुरू किया मैंने बनाना, और वो शौक मेरा बढ़ता गया, और मैं अलग अलग पूछना किसी से, फिर आके उसमें अपना ऐड करना, मसाले खुद के बनाना, मैं मसाले बनाती हूँ, मसाले की दुकान में जाती हूँ, हमारे यहाँ वो डंकनी बोलते हैं जो कुटते हैं, वहाँ जाके मैं अपने मसाले निकाल के भून के उनको दे के कुटवा के सब करके लाती हूँ, तो मुझे शौक है ऐसा।
अच्छा, हमने सुना है आशा जी आपके बहुत से रेस्टोरेंट्स भी हैं कॉल्ड आशाज।
जी हाँ जी हाँ, उस रेस्टोरेंट में मेरे मसाले जाते हैं।
अच्छा।
और मसाले वहाँ के जो मेरे काम करने वाले शेफ वगैरह वो बोलते हैं कि इसकी रेसिपी हमें दे दो, मैंने कहा ये छोड़ के कुछ भी बोलिए आप। ये मेरी अपनी रेसिपी है।
अच्छा, मैंने कहीं सुना कि आप तो इजिप्ट में भी रेस्टोरेंट खोलने वाली हैं, तो जरा संभल के संभलिएगा भाई, वहाँ तो बहुत
चीज हो गया है।
हाँ। जी जी,
इजिप्ट में अभी गंगा चल रहा है, जरा गंगा ठीक हो जाए तो इजिप्ट में भी खुलेगा,
और
अभी दुबई में भी नया और एक खुला एमिरेट्स मॉल में, बहुत बड़ा मॉल है,
वाह भाई वाह,
भी बहुत बड़ी रेस्टोरेंट खुली है, अबू धाबी में है, कुवैत में है, दोहा में है, बहरीन में है, बर्मिंगम में, लंदन में है।
ओहो, ओहो, तो खाना और गाना साथ साथ चलते, मैंने अक्सर देखा है कि जो कलाकार होते हैं, सच्चे कलाकार, खास तौर से गायक और शायद अभिनेता भी, उन लोग के हाथ में पकाने में बहुत रस होता है, क्या आपका भी ये तजुर्बा रहा है?
जी हाँ, खाने पकाने का शौक जितने गाने वाले उनको होता है, एक चीज बनाएंगे बड़े प्यार से बनाते हैं, मदन भैया बहुत अच्छा भिंडी मटन बनाते
हैं। अच्छा अच्छा,
भिंडी गोश्त, हाँ जी भिंडी डाल के, तो मैंने बोला ये भिंडी चिकट होती है, बोले खा के देख फिर बात कर बुरस, ऐसे बोलते थे बुरस बाद में बोलना।
अच्छा।
और बड़े मजे की बात बताती हूँ, गाना सिखा रहे थे वो झुमका गिरा रहे, और अंदर बार बार चले गए, रात को खाने पे बुलाओ वही रिहल सर, मैंने बोला ये ग्लास भरते जाते आते तो ग्लास खाली होता है, लेकिन उनको चर्बी दी रही है, बाद में पता लगा वो भिंडी में सारा ग्लास उबेल के आते थे। मैंने भैया से कहा भैया तुम क्या मुझे बिस्की पिला रहे हो, मूर्ख, जब बिस्की गर्म होती है तो बिस्की भी रहती पानी हो जाता है
ना, बाप बन जाती है।
तो मैंने हाँ, तो मैंने बोला आप जो करे ठीक है, आज भैया आपके गोश्त खा रही हूँ, लेकिन वो मटर उसमें दारू पड़ी हुई है, ये सोच के मेरे को तकलीफ हो रही है, चढ़ तो नहीं जाएगी, हम लोग तो पीछे नहीं ना, मालूम नहीं बिल्कुल, तो मुझे बोलने लगे नहीं नहीं, तो बड़ा बड़े थे और बहुत प्यार से बात बहना की सब आती करते थे, बहुत जब बड़े प्यार में आते थे तो बोलते थे बेटे, फिर कहते थे मूर्ख, अब समझ नहीं आई तुम्हें,
दीदी
को भी ऐसे बोलते थे बेटे, मजाक
बहुत,
वो लोग ही अलग थे,
बिल्कुल अलग थे, वो जमाना अलग था, वो लोग न जाने कहाँ गए, लेकिन आप हमारे साथ हमेशा बनी रही और आपका बेताबी से सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में इंतजार हो रहा है, तो आपसे क्या क्या उम्मीदें रखें हम, क्या क्या गाएंगी आप?
गाएंगी बर्मन साहब के गाने ही गाऊंगी, और बातें करूंगी, उनकी बातें बताऊंगी, चुटकुले सुनाऊंगी, थोड़ा सा मिमिक्री करूंगी।
ये भी सुना है कि आप मिमिक्री करती हैं, तो नूरजहां साहिबा की, मैडम नूरजहां की भी मिमिक्री करती है, वो जरूर सुनाइएगा।
जरूर मिमिक्री में अपा की, बड़ी अपा की, हमारी दीदी की, जो भी मेरे उस वक्त याद आते हैं सबकी, मैं नकल मतलब नहीं कर सकती, मैं खराब नहीं करती, स्टाइल बताती हूँ कि कैसे
उनका अंदाज क्या था, शमशान
और बड़े बड़े अंदाज उनका, और बड़े ही आदर के साथ,
बिल्कुल,
क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं,
बिल्कुल
उनके हम नजदीक ही नहीं पहुंच सकते, इतने बड़े हैं।
ये आपका बड़प्पन है और जिस आदर से आपने उन सब की बातें की है उसी आदर के साथ मैं आपको ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ और सभी लोग बेताबी से इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आइए।
जी मैं भी बड़ी बेताब हूँ, बहुत सालों बाद आ रही हूँ
जी,
और मैं अपने लोगों को देखना चाहती हूँ कि वहाँ रह के हमारे लोग कैसे हैं, कितने बदल गए हैं
जी,
कितना म्यूजिक उनका चेंज हो गया है। हाँ। मैं सब देखना चाहती हूँ,
जरूर
मैं उनसे बातें करूंगी, स्टेज पर से बात भी करूंगी उनसे।
बिल्कुल, आपको मायूसी नहीं होगी।
थैंक यू,
थैंक यू जी, नमस्कार, नमस्कार।
sbs.com.au/hindi पर जाए और ऐसे अंश का आपकी भाषा में आनंद उठाए।